أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کو پانے والا، اور دنیا سے جاتے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ کلمہ زبان پہ ہو. تو آئیے اپنے لیے اچھی سی دعا کر کے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دور قرآن 2024، آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 5 والمحصنات کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل بھی ہے، اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سب سے بڑا مسئلہ بتانے والا طریقہ بھی ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کتاب کو محسوس کرتے جائیں گے، اتنی ہماری دنیا جنت بنتی جائے گی. ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا پیارا طریقہ دیا ہے دنیا کو کانکر کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ تم اس کتاب پہ چلتے جاؤ. تم اس کتاب کی روشنی میں دنیا کو ہدایت کا عملی نمونہ بن کر دکھاؤ، تو پھر لوگ کہیں گے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. آج ہم سب کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت سارے ریسورسز دیے ہیں، جس میں ہمارا بہت بڑا ریسورس ہماری یوتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کسی نے جب بھی کبھی یہ شعر کہا تھا، آج اس شعر کو زیادہ اچھی طرح سے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہماری نسل، ینگ نسل، بچے، جس کو آج کی یوتھ کہہ سکتے ہیں، کہہ لیجئے کہ 20s کے اراؤنڈ ہے، ان کے اندر جتنی میں نے خیر دیکھی ہے نا، میں نے کبھی دیکھی ہے. میں تقابل کرتی ہوں کہ جب ہم اس ایج کے تھے، اور 18 سے 20 سال کے جو بیچ کی عمر ہے، اس وقت جو ہماری سوچ تھی وہ اس سے بہت امیچور تھی جو آج کے ٹین ایجرس کی ہے. بس صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور خود کو یوز کر کے اسلام کا ایک ریسورس بنانا ہے. اور آج کا جو پارہ نمبر 5 ہے، اس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ یوتھ اسپیشل ہے. ہمارے بچے بڑے پریشان رہتے ہیں، گھر کے باہر کوئی اور ماحول ہے، گھر میں وہ کچھ اور سنتے ہیں، باہر کی دنیا ان کو کچھ اور سکھا رہی ہے، اور وہ ہمارے بچے پریشان رہتے ہیں. جو اس پارے کو اگر ہم پچھلے پارے کے ساتھ پہلے جوڑ لیں، تو پچھلے پارے میں دیکھا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی نیکی کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. یعنی حقیقی نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کی روح کیا ہے، کہ بندہ اپنی من پسند چیز اللہ کے رستے میں دے. زندگی کے مختلف ادوار میں اس آیت کو سننے والے کا رسپانس مختلف ہوگا. ہم اپنی عمر کو لے لیں، 30, 40, 50 سے اوپر کے لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا آتا ہے مال. اللہ پیسہ مانگتا ہے، اچھا اللہ کے رستے میں کچھ دے دیتے ہیں، اچھا فلاں پلاٹ دے دیتے، اچھا یہ کر لیتے، اچھا وہ کر لیتے. لیکن جب جوان کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. لہٰذا پھر وہ صرف مال دے کر، اونلی مال کے ساتھ محبت کر کرا کے، وہ اس کا کچھ حصہ نکال کر اللہ کو نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر وہی بات ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ شکستہ ہو، تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز نے. تو جتنا زیادہ انسان اللہ کو پہچانتا جاتا ہے، اتنا اس کو اپنا وجود اللہ تعالیٰ کے رستے میں پیش کرنا آسان لگتا ہے. پھر ہم نے ایمان والے کی زندگی کا مقصد دیکھا تھا سورۃ آل عمران کے آخر میں، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، میں کہ ایک ایمان والا صرف اللہ کی کتاب پڑھ کے ہی نہیں، بلکہ اس کی کائنات کو دیکھ کر، اس کی کائنات پہ غور و فکر کر کے بھی اس رب کو پا جاتا ہے. آج اس پارے میں پورے کا پورا پارہ جس مرکز پہ گھوم رہا ہے نا، وہ ایک مومن کی پوری زندگی کا احاطہ ہے. پھر ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ موت کا وقت ہی نہیں، جگہ بھی مقرر ہے. آج یہاں اس پارے میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کہیں کسی بند قلعے میں بھی بند ہو جائیں نا، بروج مشیدہ، बड़े बड़े फोर्ट्रेसेस, सिटाडेल, मौत का फरिश्ता वहां से भी आकर ले जाएगा, तो मौत का क्या डर। हाँ तैयारी कीजिए, इम्तिहान के डर से बंदा छुप तो नहीं जाता ना, पढ़ता है, पढ़ता है तो फिर इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का शानदार अजर उधर था। यहाँ इस बारे में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उम्मत मुस्लिमा को जो दावत दी है वो क्या है, कि अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक चलने वाली बन गई तो तुम देखोगे कि तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होगे, और कायनात पे गौर व फिक्र अल्लाह की मार्फत का ज़रिया बनता है। तो गोया के आज इस बारे में जो आपके लिए एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है वो क्या है, कि 89 आयतों में से जो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होती हैं, पारा 5 में 8 आयतें हैं। दिल पे लिखिए, ये पारा बार बार आपको अल्लाह की मोहब्बत दिलाएगा। और आज की जो हमारी आखिरी सेशन होता है ना, जिसको मेरा दिल तो कह रहा है आज शुरू में कर लूँ, जो कि मैं नहीं करूँगी, ईमान की ब्रांचेस, उसमें भी अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह करे कि आप यहाँ से लेकर एंड तक सुनते रहें, तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो सूरत निसा की आयत 29, 43, 59, 71, 94, 135, 136 और 144, इनमें अल्लाह ने ईमान वालों को पुकारा है। सच बोलिएगा, और आप सच ही बोलते हैं। कई बार पांचवा पारा पढ़ा ना, कुरान खानी में भी कभी ये हिस्से में आ गया होगा, हर साल रमज़ान में भी पढ़ते हैं, और भी पांचवा। क्या कभी आपने आज से पहले ये सोचा था किस पारे में आपके रब ने आपको 8 दफ़ा पुकारा है? ध्यान ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि मेरे दोस्त की ज़ुबान तुर्की है, और तुर्की मुझे समझ नहीं आती। आज हमारी गूंगी बहरी नमाजें हैं, डम एंड डफ, हमें पता ही नहीं चलता पुकारा है रब। कभी आपने देखा होगा कि माँ बच्ची को पुकारे या बच्चे को पुकारे और वो आगे से जवाब ना दे, तो वो गुस्से में पाँव पटकती हुई जब जाएगी कि सुन नहीं रही, तो जाके देखती है तो कानों में उसने हेडफोन लगाए हुए। एकदम माँ का गुस्सा ठंडा होके झुंझलाहट में मुबतला होता है कि तूने सुना ही कोई नहीं, तो तू मानेगी कहाँ से। आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो सुनते हैं मानते नहीं, और बहुत सारे नहीं सुनते। तो आज के पारे का जो थीम है, अभी तक के सारे पारों में सबसे खूबसूरत थीम है, आज की यूथ को सामने रखें तो, और वो क्या है, शरीयत वर्सेस शहवत। शरीयत तो सबको पता है, शरीयत अल्लाह का हुक्म, शहवत कहते हैं लस्ट को, यानी आज का कल्चर, आज की दुनिया का मजहब लस्ट का मजहब है। याद रखिए, नाम आप उसको अपने हिसाब से मुसलमान कह लें, यहूदी कह लें, नसरानी कह लें, हिंदू कह लें, बुद्धा कह लें, यानी मैं दुनिया के मशहूर मजाहिब की बात कर रही हूँ, कि आप जो मर्जी नाम इनको दे दें लेकिन पीछे ख्वाहिशात ही हैं। आज क्रिश्चियनिटी वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जूडाइज्म वो जूडाइज्म नहीं है, और अफसोस के साथ कहूंगी कि इस्लाम वो इस्लाम नहीं है जो अल्लाह ने भेजा था। आज का हर रिलीजन, आप कह लें कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन जो है वो शहवात का शिकार हो चुका है, और जिसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर लोग क्या कहते हैं कि जी मज़हब लड़ाइयाँ कराता है, मज़हब से जंगें होती हैं, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन और दिस एंड दैट। तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ के साथ चलते हुए जाते जाएंगे, देखेंगे, और नसरु मिन अल्लाह ही व फतहुन करीब की जो बात है, अल्लाह की मदद और उसकी फतह के वादे किसके साथ हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे, कि जो शहवात पे काबू पाकर शरीयत का पाबंद होगा, दुनिया भी उसकी, आखरत भी उसकी, और मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज इस बारे में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो अमूमन लोग ये सोचकर सुनना पसंद नहीं करते, और सुनना पसंद कर भी दें तो सुनाना तो कोई कमी पसंद करते हैं। क्या है, अगर ये बातें की तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, लोग नाखुश होंगे, लोग आना छोड़ देंगे, लोगों को आप बुरे लगेंगे। जैसे कि आप कह रहे कि मीठी मीठी गोलियां डॉक्टर देता रहे तो मरीज आते रहेंगे, और अगर कड़वी दी तो वो नहीं आएंगे, लेकिन मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इस स्लोगन की रोशनी में कोई बात नहीं छुपाएंगे, और ख़ास तौर पे फिर जो ईमान की ताकत, आज हम ईमान की ताकत को जिस रूप में, रंग में देखेंगे, वो है शहवात का मुकाबला। याद रखिए कि जानने से कुछ नहीं होता, मानने की बात है। टू बी कन्विंस्ड इज नॉट अ बिग डील, किसी चीज़ से कन्विंस होना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मानना। सच बताइए कि क्या हम मुसलमानों ने बचपन से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं सुना? क्या हमारे जहन में लफ्ज पर्दा आता ही कुछ नहीं आता? बेहयाई, जिना, बदकारी, कोर्ट मैरिज, खुद ही भाग के घर से शादी कर लेना, नहीं आता? हमारे बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये सदी छोड़ दीजिए, ये सदी जो पीछे आ रही है इसको जरा सा बैक पे कर दीजिए। 19वीं सेंचुरी तक तो ये सवाल भी नहीं थे। पर्दा हमारे लिए पर्दा था, कोई नहीं सवाल करता था, पूछता था कि कौन सा पर्दा, चेहरे का पर्दा, शरई पर्दा, फुला पर्दा। कभी आपने प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का नाम सुना था आज से 10-15 साल पहले? आज आपकी इमिग्रेशन पे लोग पूछते हैं, आर यू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉन प्रैक्टिसिंग? वजह क्या है? कि आज हमने ख्वाहिशात और शहवात की वजह से दीन के हिस्से बखरे कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। एक किस्सा सुना देती हूँ। आपने एक सहाबी जिनका नाम मरसद बिन मरसद था, उनको मक्का में फंसे हुए बूढ़े और हैंडीकैप लोगों को वहाँ से लाने का काम दिया। हिजरत के नतीजे में सबको ही आना था, लेकिन वो नहीं आ सके क्योंकि उनकी मजबूरी थी। तो आप लोगों को वही काम देते थे जिसका वो अहल होता था। चांदनी रातों में लोग जाते थे, सफ़र करते थे क्योंकि रोशनी का इंतज़ाम नहीं था इसके अलावा। तो मरसद बिन मरसद चांद की रात में निकले और मक्का में गए। एक दीवार फलांगी तो दूर से उनको एक औरत का साया नज़र आया। करीब जरा आए तो वो औरत उनको पहचान चुकी थी और कहने लगी, मरसद या मरसद, अहलम व सहलन, वेलकम ओ मरसद, बेतिंदन लैलन, आज हमारे साथ रात गुजारो। आवाज़ से पहचान गए कि वो दौरे जाहिलियत की महबूबा गर्लफ्रेंड थी। अब जूं ही उसकी आवाज़ कान में पड़ी तो इन्होंने कहा कि या उनाक, यहाँ से चली जा, क्योंकि अल्लाह ने जिना को हराम किया है। वही खातून, वो लड़की, वो गर्लफ्रेंड जो अभी थोड़ी देर पहले उससे मोहब्बत के दावे कर रही थी, जब उसने देखा कि ये लड़का तो बदल गया तो आवाज़ लगाई, ओ बस्ती वालों, ये तो तुम्हारे कैदी लेके जा रहा। बस्ती वाले उठे और मरसद जान छुड़ाते बचाते हुए वहाँ से मदीना आए। जब मदीना आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं उनाक से शादी कर सकता हूँ? ज़रा से इसको सोचो। उस पर कुरान की और आयतें नाजिल हुई हैं, सूरत नूर में भी हैं और पीछे भी हम सूरह बकरा में पढ़े। मैंने आपको यहाँ इतनी सी बात ज़रा जो सुनाई है ना, ये क्यों सुनाई है? एक तो हमारे बच्चे, यंग बच्चों के लिए ये पारा है। आज कोशिश करूँगी कि इनको तारीख की कुछ कहानियाँ सुनाती रहूँ ताकि इनको तो पता चले कि इस्लाम ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा था, आज भी है। ये अलग बात है कि वो किसी का जुमला कि कुरान इज़ अ ब्रेव बुक इन कावर्ड्स हैंड्स, किताब कुरान एक बहादुर किताब है जो बुज़दिलों के हाथ में आज। तो खैर, उलमाए कराम कहते हैं कि मरसद के पास कितने ही जवाज़ यानी रीजंस थी उस वक़्त अपनी उस दौरे जाहिलियत की महबूबा की बात मानने की। चांदनी रात, वैसे दिल फिका होता है उस वक़्त, कई गाने और फिल्मों में इसको प्रोमोट करते हैं। दियारे खैर परदेस में था, अपने मुल्क में सो फिक्र होता है कि अब्बा का कोई दोस्ती ना देख ले, वो गैर में थे। मुशरिक मुल्क यानी आज की ज़ुबान में आप कह लें कि नॉन मुस्लिम मुल्क में आकर जी ये गर्लफ्रेंड तो रखनी ही पड़ती है, ये कॉन्सेप्ट। फिर तीसरी बात है सेहतमंद, अल्लाह के नबी किसी मरियल इंसान को तो ऐसा भारी मुश्किल काम नहीं देंगे ना, यानी जिस उम्र में इंसान के अंदर जज्बात भी हों वो उम्र थी। फिर पांचवी वजह ये कि वो औरत खुद दावत दे रही है, लेकिन क्या चीज़ थी जिसने मरसद को उस औरत की उस दावते गुनाह या दावते जिना से रोक दिया? वो थी ईमान की ताकत। आज आपके मेरे बेटों बेटियों, हमारे बच्चों को भी और हमारे मर्दों को भी और हमारी औरतों को भी इसी ताकत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम देखते ही जाएंगे पारे के दौरान कि कैसे शहवात पे काबू पाने के लिए ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं, सूरत निसा से ये पारा शुरू हुआ और ये पारा उस लिहाज से भी अहम है। पीछे कौन सा पारा था? पारा नंबर 2। पूरे का पूरा एक ही सूरत थी उसमें और वो सूरत बकरा थी। इसी तरह सूरत निसा ये पारा, पारा नंबर 5, सूरत निसा की आयत नंबर 24 से 147 तक है, यानी इसमें बीच में आपको कोई मुख्तलिफ सूरतें नहीं आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वल मुहसनातु मिनन्निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। चौथा रुकू है सूरत का, आयत नंबर 24-25। निकाह की हुर्मत और पासदारी इसका टॉपिक है, और हराम की गई शौहर वाली औरतें मगर वो जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं। अल्लाह ने ये अहकाम तुम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गईं कि अपने माल के मेहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो। बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत रानी के लिए, यानी सिर्फ लस्ट पूरी करने के लिए। इसलिए जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ, इन्हें इनका मुकर्रर किया हुआ मेहर दे दो, और मेहर मुकर्रर होने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है, और तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की पूरी वुस्सत और ताकत ना हो, तो वो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए इनके मालिकों की इजाज़त से इनके निकाह कर लो, और कायदे के मुताबिक इनके मेहर इनको दो। वो पाक दामन हो, ना कि एलानियाँ बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया आशनाई करने वालियाँ। बस जब ये लौंडियाँ निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है, इस सज़ा से जो आज़ाद औरतों की है। कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से इन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। क्या पता चला? दो आयते हैं सिर्फ। आपको तय कि निकाह के मौजू को पूरा इसमें समेट दिया गया। पिछली आयत जो पारे की आखिरी थी, हुर्रिमत से, वो मुहर्रमात का तज़किरा कर दिया गया जिन औरतों से निकाह जायज़ नहीं है। फिर इसके बाद इस पारे की पहला लफ्ज़ वल मुहसनात मिनन निसा, उसी लिस्ट में एक एड ऑन हो गया, और वो क्या था कि किन से निकाह नहीं कर सकते, उसमें एक औरत वो भी है जो किसी भी मर्द के निकाह में है, यानी हर शादीशुदा औरत। बस ख़त्म, दैट्स इट। यानी एक औरत जब किसी के निकाह में आ गई, अब एक लड़की है, तुम्हें उससे मोहब्बत थी, तुम उससे शादी करना चाहते थे, पर उसके अब्बा नहीं माने, उसके घर वालों ने तुम्हें इस काबिल नहीं समझा कि तुम उनको खुश कर सकते हो, तो ख़त्म, अब शादी हो गई। अब क्यों पीछे फिरना, अब क्यों ये करना और वो करना? कितनी कहानियां आपने फिल्मों ड्रामों में देखी सुनी होंगी। तो लिखिए, निकाह एक संजीदा माशरती माहदा है। इस्लामी माशरे में निकाह एक बुनियादी हैसियत रखता है। आप देखिए कि कोई भी घर बनता है ना, तो ईंटों को जोड़ते हैं तो फिर घर बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हर शादी एक ईंट है, ब्रिक, फिर दूसरी शादी एक और ब्रिक है, फिर एक ब्रिक से दूसरी जुगती। ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंट है। अब वो शादी हुई, उसके नतीजे में बच्चे आते हैं। लिखिए, इस्लाम में शादी से पहले बच्चे का कोई तसव्वुर भी नहीं है। और ये तो आज गैर इस्लाम की छाप में आ गए ना, कि शादी माँ बाप करते ही तब है जब बच्चा होने वाला हो जाता है। ये तो शहवाद का एक नतीजा है, इसको तो ना ही छेड़िए। लेकिन गैर इस्लाम में आज आप जिस माशरे में आंखें खोले बैठे हैं, यहाँ तो अब ये कोई बात ही नहीं रहेगी कि लड़का लड़की दोस्ती करे। आज तो माएँ भी कहती, शुक्र करो लड़की से दोस्ती की है उसने, लड़के से नहीं की। शुक्र करो वो मुसलमान तो है, गैर मुस्लिम तो नहीं। ये शहवाद का नतीजा है। देखिए, ये बड़ा पुरदर्द टॉपिक है, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसमें तो इतना दर्द भरा हुआ है कि अगर आप इस बारे को आंसर टिश्यू पेपर लेकर सोने तो आपका वो गीला हो जाए। इस वक्त जो हाल है इस वक्त दुनिया का, मैं कहती हूँ हम किन किन चीज़ों के नामों पे दीन से रुके हुए हैं। कुछ को तो दीन आता ही नहीं, उनको लेना ही नहीं, वो छुट्टी पे हैं, दे आर ऑन वेकेशंस। वो तो कहते हैं फन एंड फ्रॉलिक, योलो, यू लिव वंस। वो कहते हैं मौज करो, मस्ती करो। लेकिन जहाँ दीन है, हम फिरकों में, मसलकों में, जमातों में, अपने रूल्स में, अपने रेगुलेशंस में, कभी किस किस नाम से हम दीन से हट जाते हैं। अभी तक वो दुनिया में वो आया ही नहीं है जो हमें दीन सिखाए बंदा। और अगर कोई दीन सिखाने लगे, हमारी बच्चियों की इज्जतें बचने लगें, हमारे बेटों की नज़रें पाक होने लगें, तो कितने सवाल खड़े हो जाते हैं। ज़रा से इस दर्द को महसूस कीजिए। अल्लाह ने इस एक रुकू में, दो आयतें सिर्फ, हक मेहर देकर निकाह करने की बात की है। पूरे निकाह के जो रुकन है ना, यानी इस पहले टॉपिक को तो हमेशा जब तफसीर होती है फिर तो इस पे घंटों बात होती है ना, कि निकाह के क्या रुकन है, किस चीज़ से होकर निकाह होता है, किससे नहीं। तीन बातें लिख लीजिए, हक मेहर देकर निकाह करना है, बगैर हक मेहर के तذکرے के निकाह निकाह नहीं होगा, निकाह की नीयत घर बसाने की होनी चाहिए, टाइम बाउंड शादी कुछ नहीं होती, पेपर मैरिज शादी कुछ नहीं होती, और फलां फलां के नाम पे निकाह कर लो, कुछ दिन रह लो, फिर जाना है तो तलाक दे दो, ये नहीं होती। और मर्द को अपनी बीवी पर खुशी से खर्च करने का हुक्म है। शादी का ए टू जी खर्चा मर्द करता है। इस्लाम में शादी क्या है? एक मर्द बालिग हुआ, एक लड़की बालिग हुई। जैसे पैदा होते बच्चे को दूध चाहिए होता है ना, तो उसके मुंह में दांत नहीं है,
क्योंकि बिला जरूरत है माँ को तकलीफ होगी। जरा सा 4 6 माह का हुआ, दांत निकलने लगे तो कहा इसको केला दे दो, इसको आलू दे दो, इसको फलां चीज दे दो। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ग्रो करता है। जब वो बढ़ता है उसकी खुराक गाढ़ी होती है, पहले सिर्फ पानी था, फिर उसमें सॉलिड्स आ गए, सेमी सॉलिड, ये करते हुए फिर वो खाना खाने लग जाता है। दांत आ गए तो दूध छूटा और रोटी खाने लग गया, फितरत का असूल है। जरा चलने फिरने लगा, चलो भाई इसको तालीम के लिए, तरबियत के लिए किसी मस्जिद मदरसे किसी स्कूल में डाल दो। जो ही बच्चा बच्ची बलूगत के करीब आता है, अंदर चेंजेस आती हैं, फितरी बातें आती हैं, इमोशनल चेंजेस आ रही होती हैं बच्चों के ऊपर, क्या हालात होते हैं। इस्लाम ने सिंपल बात की, अब बच्चा दूध मांगे तो माँ ना दे, कि अभी इसकी उम्र नहीं आई दूध पीने की, अभी इसका टाइम नहीं, डॉक्टर ने दिया अभी शायद ये है वो है। नहीं, माएँ तो पहले बेचैन होती हैं, बच्चा बच्ची बालिग हो रहे हैं, उनकी फितरत है, उनके अंदर ज़रूरत है, जाओ शादी कर दो। और लड़की बालिग हो गई, लड़के के अंदर कुछ चेंजेस आ गई, वो लड़का अपने बाप से कहता है अब्बा मुझे शादी करनी है। अब्बा जी कहते हैं अच्छा, ऐसी कोई लड़की फैमिली की अच्छी कोई है मिलने जुलने वालों में, कोई पसंद है तुझे? नहीं अब्बा, आप जिधर मर्जी कर दें। अब्बा जी कोई अपने हिसाब से बेहतरीन बच्ची, किसी की भी बेटी है बहन है, उसका रिश्ता मांगते हैं। वो कहते हैं दे दीजिए। मस्जिद में मौलवी साहब है, अच्छा सर की नमाज हो रही है, मौलवी साहब जरा सा आधा घंटा आपको उसके बाद चाहिए, 5 मिनट बल्कि आधा, भी तो मैंने लंबा कह दिया। खैरियत, वो मैंने अपने बेटे का निकाह कराना है। उधर लड़की का अब्बा आ जाएगा, जो भी उसके साथ आने चाहे, दो गवाह होंगे, और वो लड़के का अब्बा खुद मौलवी साहब की भी जरूरत नहीं है। हैरान होने वाले मसाइल हैं जो आप समझे। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे दौरे कुरान में आपको मैं कभी किसी फिकी मसले पर नहीं उलझाऊंगी। आप जिस फिक को मानते हैं खुशी से मानिए, कुरान का मौजू फिक है भी नहीं। ये तो आप देख नहीं रहे, रोज हम रो रो के जाते हैं, हमारा अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ, ईमान तो है नहीं, अकीदा तो ठीक नहीं है, हम फिक में कहाँ पढ़ेंगे। आज हमें तो नमाज भी फीकी लगती है। तो किस्सा मुखसिर है कि एक बाप खुद निकाह पढ़ा सकता है, और कई मसाइल हैं, और वहाँ खड़े खड़े मस्जिद में नमाज के बाद चलो जी इसकी बेटी इसकी बहन जो भी उसका वली है लड़की का, इसके साथ इस लड़के का निकाह करते हैं। मंजूर है? मंजूर है जी। सारी उम्र इसको रखोगे? रखूंगा। क्या दोगे? अल्लाह जी मेरे पास यही है, मैं तो 1,000 रुपये महीना कमाता हूँ, $1,000 है मेरी। अच्छा चलो लिख दो। अच्छा 10,000 है, 10 लिख दो, 50 है। और उसी महफिल के बाद वो लड़की जो हराम थी वो हलाल हो गई, सबके सामने हाथ में हाथ डाल के हलाल गर्लफ्रेंड को लेकर जाए मेरा लड़का। वो बागों में झूले झूले, वो जाकर मस्तियां करें, कोई उनको नहीं रोक सकता, ना अम्मा का डर, ना अब्बा का डर, ना मौलवी साहब, ना बदनामी। आप आज मेरी इस बात को लिख लें, आज आज से आप अपने सारे बच्चे बच्चियों की ये चीज सामने रखकर शुरू करके देखिए। आपको मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ 10 साल देख लीजिए, क्योंकि उस शादी को पनपने तो दीजिए, आपकी अगली नस्ल सिक्योर हो जाएगी, आपके अगले हालात इतने खूबसूरत हो जाएंगे, आप कहेंगे कि इस्लाम इतना आसान है। अब जब हम उनको भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, तो फिर आपने नहीं देखा कि बच्चे को भी जब जरा मां ना देखे तो क्रंकी हो जाता है? ये क्रंकीनेस है। फिर वो कहते हैं अच्छा हम अपनी मर्जियां करेंगे, और अपनी मर्जियों के जो नतीजे निकलते हैं वो आपने मैंने बहुत अच्छी तरह देखे। मैं तो इस्लाम तो बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा फिलहाल मैं क्या कहूँ। सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि जब आप किसी को उसका हक अपने हिसाब से नहीं देते ना, तो फिर वो छीन लेता है। दुनिया में जीने का यही हक है कि इससे पहले कि कोई आपसे मांगे आप उसको दे दीजिए। जितना ज़्यादा आप उसको मांगने से पहले दे देंगे ना, वो खुशी से आपकी उस चीज़ को कबूल करेगा। बाकी इसकी डिटेल्स आप इन्हीं आयतों की किसी सेट की जाके तफसीर सुन ले। मैंने कभी बुखल नहीं किया ये मौजू बोलते हुए, मेरा तो मौजू ही घर है, मेरा घर मेरी जन्नत, हम बच्चे मेरे, मैं और बच्चे, माँ और बेटा, क्योंकि अभी तो हमारे घरों में चैन नहीं है, हम बड़ी बातें कहाँ करें, हम औरतों को भी क्या और काम देने और लेने के हैं। तो बहरहाल इस वक्त इतना ही काफ़ी है, बस इतना कह देती हूँ पारे के थीम के साथ, शरीयत बामुकाबला शहवत। हमारे दीन में, हमारी शरीयत में हर हलाल काम को करने की, बताने की, पूछने की पूरी रुख्सत है, कोई चीज़ हराम नहीं। इंसान का मिजाज है, खाने को दिल करता है खाना हराम नहीं, बल्कि सवाब है, कुलू हुक्म है खाओ, पीने को दिल करता है पियो वशरबू हुक्म माने। शोहर बीवी का ताल्लुक हलाल है, ख्वाहिश है, अल्लाह ने इसमें अजर रख दिया। एक औरत का पैर नहीं उड़ने को दिल चाहता है, आप सर से पाँव तक पैर नहीं उड़िए, आपको कोई नहीं रोकता अच्छे कपड़ों से अच्छे जेवरात से, लेकिन एक हद है, यहाँ तक ये है, बाहर जाते वक्त उसके ऊपर एक ओढ़नी पहन लो। युद्दीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, इस्लाम क्या कहता है? नाइट वेयर्स में जाकर बाहर रोड पे चले जाओ, और या फिर अबाए में ही और निकाब में रात को सो जाओ मियाँ के साथ, बेवकूफ़ी है ना। ये हमें बैलेंस नहीं करना आता, تو لہٰذا شریعت بمقابلہ شہوت میں آپ اپنے بچوں کو جتنا اللہ سے جوڑتے ہیں ان کی ایمان کو بڑھاتے ہیں، وہ خوشی سے مانے گا، اور یقین کریں اس میں حریت ہے، اس میں آزادی ہے. ہم لوگوں کے لیے پہنتے، لوگوں کے لیے جیتے، لوگوں کے لیے کھاتے پیتے، اور بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ساری زندگی لگا دی، مجھ سے کوئی خوش نہیں ہوا. اب اگلا جو رکوع آ رہا ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا. پورے پارے کا کہہ لیجئے کا جو مین تھیم ہے نا، وہ اس کی ایک آیت کے اندر سے نکل رہا ہے. آیت 26 سے 33 رکوع نمبر 5 ہے. اللہ بندوں کے لیے آسانیوں کو چاہتا ہے. یہ لکھ لیجئے، یہ ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے، ہم نے شادی ایک سال کے اوپر لٹکا دی، ہم نے شادی کی تیاریوں میں کھپ کھپ کے اپنے بازاروں کے پھیرے لگا دیے، ہم نے کتنے جوان بچے بچیوں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا. بیٹا کہہ دے میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی. بیٹی کہہ دے کہ اچھا فلاں جگہ اگر رشتہ آتا ہے تو میرا وہاں نکاح کر دیں، ہم کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی. بھائی اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ لڑکا کہتا ہے میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، آپ کہتے ہیں بےغیرت. بھائی بےغیرتی کیا، جس نے زندگی گزارنی ہے وہ نہ دیکھے. پچھلے حصے میں آپ سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مہذب طریقے سے ایک دوسرے کی بات کریں. اب جب آپ نے اس کی اجازت نہیں دی تو انہوں نے ڈیٹنگ کر لی، پھر وہ گئے اور وہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہاں بیٹھ کر تو ڈیٹنگ کرتے پھرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ذرا سا تھوڑا اور سمجھ لیں، وہ 2-3 سال سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ سرکل چلتا جاتا ہے. تو سنیے گا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم. اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو محسوس کیجئے گا، بلکہ اللہ کی چاہت آپ کو مجھے اس میں دکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے کہ نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے، یہ نوٹ کریے گا آیت، یہ اللہ کی چاہت ہے. آج ہم اپنی چاہتوں پہ اللہ کی چاہت کو پیچھے ڈالتے ہیں. کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہاری توبہ قبول کرے. یعنی سننے میں دل میں خیال آ جاتا ہے، ہائے میں تو اتنا کچھ کر چکی، ہائے میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، جوانی کا گناہ، کوئی ایک گناہ، بڑا گناہ. اللہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو. میں تمہاری ماں کو نہیں بتاؤں گا، تمہارے باپ کو نہیں بتاؤں گا، اور تم بھی کسی کو نہ بتاؤ، چپکے چپکے میرے سامنے جھکتے جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ ایک محفل میں تھے اور بارش کی دعا کرنے کے لیے لوگ نکلے، خشک سالی تھی، تو کہا کہ سب دعا کریں گے بارش ہو جائے گی، صلاۃ الاستسقاء جیسے آج بھی ہے ہمارے اسلام میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی محفل میں ایک گناہ گار بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ اتنا خفا ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی. موسیٰ نے بتا دیا. اب وہ بندہ جو بیٹھا تھا اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی. دیکھیے مجھے آپ جتنا مرضی نیک سمجھیں، پر مجھے پتہ میں کیا ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ. اس بندے نے نا اپنے اوپر افسوس کرنا شروع کر دیا، تو ہے تجھ پہ، ایک تیری وجہ سے سب کی دعائیں رکی ہوئی ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ سے کیا باتیں کی، تھوڑی دیر گزری تو بارش شروع ہو گئی. موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے، ابھی آپ نے کہا بارش نہیں ہوگی، گناہ کر بیٹھا یہ، اب کیا ہوا؟ کہا کہ اے موسیٰ اس گناہ کار نے توبہ کر لی، جب اس نے توبہ کر لی میں نے اس کو معاف کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ اس کا نام تو بتا دے. کہا جب وہ میرا نہیں تھا میں نے تب تجھے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا بن گیا. یہ ہے یتوب اللہ، اپنے اور رب کے بیچ میں کسی کو نہ لائے، سب کو نکالے، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بہن کو، شوہر کو، اپنا گناہ لے کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیجئے کہ اللہ میں آپ کے سامنے جھک گئی. اپنے لیے ہم سب اپنے گناہوں پہ سوچتے ہوئے دعا کرتے ہیں، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ دیکھیں کہ جتنا بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ اور زیادہ پیار آتا ہے. لیکن توبہ کن کی نہیں ہوتی یا کیوں نہیں کرتے، اس کا تذکرہ اگلے حصے میں ہے. اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں، فالوئنگ دیئر لسٹ، خواہشات، تمنائیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تمہیں تخفیف چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں کے پٹاروں کو اللہ پیچھے ڈالتا ہے. آگے دیکھیے گا، پھر آپ کو پہلی پکار، آپ گنتے جائیے، آپ کو 8 دفعہ اس بارے میں آپ کے پیارے رب نے پکارنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ऐ ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो और अपने आप को कत्ल ना करो। लुक देखिए, इस्लाम सुसाइड से रोकता है। ये आयत का नंबर, इसका रेफरेंस नोट कर लीजिए। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, ना अपनी ना किसी की। जो इस्लाम आपको आपकी अपनी जान लेने नहीं दे रहा, क्या वो दूसरे की लेने देगा? सूरह बकरा में पढ़कर आए, आगे सूरह मायदा में कत्ल की बहुत सारी बातें, तो ये आयत आपके इस दलील की मिल गई कि खुदकुशी हराम है। आज आपको तो खुदकुशियों का फैशन हो रहा है। अभी चंद दिन पहले मुझे सुना रहे थे आपके सर कि किसी बंदे ने कहीं जाकर, जो आजकल जंग चल रही है, उसमें कहा कि मैं पैलेस्टाइन के साथ हूँ और मैं ये दिखाने के लिए कि मैं उनके साथ हूँ और फलां कौम जुल्म करिए, मैं अपने आप को जला रहा हूँ। लाइटर निकाला, अपने आप को जला के मर गया। ये कौन सा तरीका है किसी को सपोर्ट करने का? जितना क्यामत करीब आती जाएगी ना, शैतान ने कराना है। कुर्बे क्यामत की अलामतों में से हैं, तो फरमाया कि अपने आप को कत्ल ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। और जो शख्स ये नाफरमानियाँ सरकशी और जुल्म से करेगा, तो अन करीब हम इसको आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी सारी दुनिया को भी अल्लाह आग में डाल दे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ नोट कीजिए, ज़रा सा अपने दिमाग में शहवात के टॉपिक को लीजिए। कबीरा गुनाह, मेजर सिंस, कोई करके बैठा हुआ है, कोई माजी का गुनाह, कोई हाल का गुनाह, कोई मुस्तकबिल में इरादे किए हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत और बुजुर्गी की जगह दाखिल करेंगे। शहवात में अक्सरियत कबीरा गुनाह की, और कबीरा गुनाहों में जहाँ शिर्क है, जहाँ सूद है, माँ बाप की नाफरमानी है, वहाँ जिना भी है, फुहश भी है, और इसी तरह की चीज़ें। अल्लाह कहते हैं, रुक जाओ, मेरे डर से, मेरे खौफ से रुक जाओ। नस्रु मिन अल्लाह व फतहुन करीब के वादे को पूरा कराने के लिए रुक जाओ। आप कहते हैं कि ये वादा कोई मैदान जंग में जाके पूरा होता है? नहीं, ये आपके मेरे अपने इस छोटे से 5-7 फुट के वजूद के ऊपर भी अल्लाह का वादा है कि तुम गुनाहों से बचो, मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर फतह दे दूंगा और तुम्हें इज्जतें भी दूंगा। और इस चीज़ की आरजू ना करो जिसके बायस अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर बुजुर्गी दी है। मर्दों का इसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए इसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से इसका फजल मांगो। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। माँ बाप या कराबतदार जो छोड़ मरे, इसके वारिस हमने हर शख्स के मुकर्रर कर दिए, और जिनसे तुमने अपने हाथों माहदा किया है, इन्हें इनका हिस्सा दो। हकीकतन अल्लाह ताला हर चीज़ पर हाजिर है। क्या पता चला, अल्लाह ने इस पूरे रुकू में बड़ा खूबसूरत तरीका दे दिया। ईमान, ईमान और ईमान। अपने ईमान की कुव्वत को बढ़ाओ। बहुत सारे गुनाह हमसे जो होते हैं ना, वो ईमान की कमजोरी की वजह से होते हैं, और ईमान की कमजोरी की वजह से फिर हम मजीद गुनाह करते हैं। देखिए, आपने एक महसूस किया होगा कि जब हम शावर ले लेते हैं, साफ सुथरे होते हैं ना, तो फिर हमारा दिल करता है कि हमें पसीना ना आए। कोई काम ऐसा नहीं छेड़ते जिसके साथ गंदगी का कोई शुबा हो, लेकिन जब कभी इंसान गंदा होने लगता है ना, तो फिर पसीना आए। अच्छा, ये भी काम कर लूँ। ख्वातीन ज़रा किचन में जब काम करती हैं तो देखा करें, खाना भी बना रही, ये भी कर रही, क्योंकि एक ही दफ़ा चलो जो भी कपड़ों में पसीना आने आ जाए, फिर जाके शावर लेंगे। लिखिए, तौबा करना, शावर लेना, साफ सुथरे कपड़े पहनना। जिस वक़्त इंसान तौबा कर लेता है, उसके बाद फिर उसका दिल चाह रहा होता है कि मैं कोई गंदगी ना करूं। इसके बरक्स पहला गुना मुश्किल है। वो दोस्त के कहने पे, सहेली के कहने पे पहली दफ़ा कहीं होटल में गए, खौफ आ रहा था, और वहाँ देखा कि पहले से कोई लड़का मौजूद था। आपकी तो जान बन गई, आपके तो कहते हैं काटो तो बदन में लहू नहीं, कि अल्लाह खैर से आज पहुंच जाऊं, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। और खुदा ना खास्ता अगर आप वहां से बच के आ गई और कुछ ना हुआ, अगली दफ़ा वही दोस्त कहेगी चलो और चलते हैं, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। हो सकता है तीसरी दफ़ा आप दोस्त के कहे बगैर उस लड़के को मिलने चली जाए। ये है शहवात बमुकाबला शरीयत। जब ईमान कम होता है, ये सब साइमल्टेनियस है, ये ऐसे हाथ को देखे गोल है, ईमान वर्सेस वो शरीयत वर्सेस, ये एक स्पिन है, हम सारा दिन इसी में से गुजरते हैं। तो लिहाजा इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक आयत देखिए, निसा 29 थी, और अल्लाह ने इसमें क्या बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, यानी एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी ने जो हजरतुल विदा के मौके पे फरमाया था कि तुम्हारे जान, तुम्हारे माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जैसे आज का ये दिन, ये शहर। तो लिहाजा हम किसी का भी माल नहीं खा सकते। अब आज आप देखिए, जिस दुनिया में आप और मैं, हमारा सबसे बड़ा जो जुर्म आपको फोर्थ पारा पढ़कर समझ आया होगा, यकीनन आया होगा, वो क्या है कि जब हमने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ा, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना छोड़ा, तो नुकसान क्या हुआ कि ना तो मर्दों की निगाहें पाक रहीं और ना औरतों की किस्मतें। आज ऐसे मुंह खोल खोल के और चैनल्स और इस तरह से बच्चे बच्चे के सामने वो चीज़ें आती हैं, इस तरह से ऐसे किस्से पेश किए जाते हैं कि हया ख़त्म हो गई। क्योंकि आज हमारे यहाँ बुराई को रोकने का मामला नहीं, और आज सिंबल है, देखिए ना कि ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, अमूमन ये बड़ाई का सिंबल है। शराब के बगैर पार्टी कैसे होगी, और मिक्स गैदरिंग ना हुई तो वलीमा कैसे होगा, और जब बहू को अगर 10 लाख का जोड़ा और जेवर और कपड़े पहना दिए हैं तो अब उसको दिखाया ना नहीं, ये फोटो सेशन क्या है? एक गैर मर्द एक लड़की को इतने क्लोजली ऑब्जर्व करे, और दुपट्टा ठीक करने के बहाने उसके जिस्म के किस किस हिस्से को वो नहीं देखता होगा? क्या वो दरिंदों की निगाहें नहीं होती होंगी? उसके अंदर क्या है जान बरपा होता होगा वो लड़का जो एक लड़की का मेकअप करता है? इससे भी बड़ी शहवत क्या होगी कि लड़कियों का मेकअप अब लड़के करने लग गए। मैं गोरों की बात नहीं करती, मैं अपनों की, मुझे तो सिर्फ अपनी फिक्र है। ये उम्मत मुस्लिमा, ये उम्मत रसूल हाशमी, इसका तो मिजाज ही कुछ और था। ये तो शहवात के ऊपर पाँव रख के खड़े होने वाली कौम थी, आज हमने शरीयत को पाँव के नीचे दिया हुआ है। तो लिहाजा बड़ाई का मेयार ना दिखाई देने वाला ईमान है। आप 1,000 बंदे की दावत करके ये 50 खाने खिला दें, आप बड़े नहीं होंगे। इन अकरमकुम इंद अल्लाही अतकाकुम, ईमान अंदर आएगा ना कुछ भी नहीं होगा, आपके लिए लोगों के दिलों में इज्जत होगी। और आज जो हम अपनी शादियों और अपने लाइफस्टाइल में जो स्टाइल देखते हो, कहते हैं मेरे जैसा कौन, कोई हमसा हो तो सामने आए, तो जुमला लिख लीजिए कि बर्तरी का एहसास, फुल ऑफ माई सेल्फ, मैं सब कुछ हूँ, आई मी वी आई एम, यानी मैं। बर्तरी के एहसास ने हमें कई खराबियों में डाल दिया, यानी बर्तरी का एहसास कई माशर्ती खराबियों की असल जड़ है। आप देखिए वो बच्चे का वलीमा नहीं कर रहे होते, वो शहर में लोगों को दिखा रहे होते हैं कि अब्बा जी के पास पैसा कितना है, और वो जो शादी हॉल चूज होते हैं, और आज तो हमारी पूरी शादी जो है वो एक बगावत नहीं बन गई, मुकाबले पे आते हैं कि अल्लाह हम भी ले आए अपनी फौजें तू भी ला, हम हर वो काम करेंगे जो सुन्नत के खिलाफ है, हाँ आखिर में हम सर पे कुरान रख देंगे, कौल अमल सर से पांव तक हर चीज़ कुरान के खिलाफ, और बेटी की शादी में कुरान सर पे रख लेते हैं। तो याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये करते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। क्यों करते हैं? रिवाज, रस्में, खानदान, हमारी बिरादरी, कुछ चीज़ें सदियों के रिवाज से जड़ें पकड़ चुकी होती हैं, जैसे वो कहते हैं ना डीपली रूटेड होती हैं, और वो लोगों के जहनों पर ऐसे छा जाती हैं कि इनसे दामन छुड़ाना मुश्किल है। इसमें से आज एक हमारा शादी कल्चर है, इस पे आप चाहें ना तो यूट्यूब पे एक लिंक लिख लें, शादी कल्चर लिखेंगे ना इसी नूरुल कुरान पे जाकर, या नाम हमारे के साथ कहीं भी, तो आपको वो लेक्चर मिलेगा। सुनिएगा, पिछले साल में ही हुआ है कि आज हमने शादी को पिक्चराइज करना शुरू कर दिया। कभी आपने सुना था कि हीरोइनों की तरह दूल्हा दुल्हन कभी शालामार बाग में फिर रहे हैं और कहीं सेट लगा लगा के घूम रहे हैं फिर रहे? आपने शहर के रास्ते ब्लॉक किए हुए सिर्फ इसलिए कि कोई गाना फिट करना है वहाँ तो वो मंजर पिक्चराइज किया जाए? तो जब कभी ऐसे माहौल में अल्लाह का कोई बंदा मेरे ही जैसा होगा बेचारा, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि अगर सिर्फ हम इस रमज़ान में अपने ईमान को बढ़ाने के लिए इस किस्म की चीज़ों पे भी तनकीद करके अपने आप को बेहतर करें, तो इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक अल्लाह हमारे लिए कई रास्ते खोल देगा। जब लोग ऐसी कोई बात करते हैं ना तो दूसरे लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, क्या बात है, इनको क्या है, और इतने हम मानूस हो चुके होते हैं अपने इन तौर तरीकों से। जैसे मिसाल अभी दी, किसी ने कहा कि क्या हो गया भाई, वो शादी जिसमें ये लाड़ चौ ना किए जाए वो तो बसती नहीं है, तो बदशगुनी होती है। किसी ने कहा ये कुंवारों की शादी है या जी रांडों की शादी है, यानी मीन शादी पे हल्ला गुल्ला करो, क्योंकि हल्ला गुल्ला मानूस हो चुका है। और सुन्नत तरीका बीबी फातिमा की शादी, अल्लाह के नबी की अपनी शादियाँ, सहाबा कराम की शादियाँ गैर मानूस हैं। आपने फरमाया कि दीन अजनबियत से शुरू हुआ था, एक वक्त अजनबी होगा, फतूब लिल गुरबा, ग्लैड टाइडिंग्स टू दी स्ट्रेंजर्स। तो क्या होता है कि इंसानों की ये कमज़ोरी है कि वो मानूस, यानी वो चीज़ें जो फेमिलियर हैं उन तरीकों को छोड़कर नॉन फेमिलियर तरीके जो हैं वो पसंद नहीं करते। और फिर एक वक्त पता क्या आता है, ये सब कुछ दीन के नाम पे होता है। हमारे शादी कार्डों में एक वक्त था निकाहों में सुन्नती लिखा होता था, अब वो भी गया। शादी सुन्नत है, आप ये जुमला लिख लें, शादी एक इबादत है। आप मस्जिद में आकर कोई ढोल ढमक्का कर सकता? मस्जिद में आकर ये मर्दों औरतों के हाल अलग क्यों है? ये वॉशरूम और टॉयलेट्स अलग क्यों होते हैं मर्दों औरतों के? अब इसको भी एक कर दें, हॉल भी एक कर दें, और आगे वाले वक्तों में जो हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कुछ होने वाला है और हो रहा है अभी से। तो क्या पता चला कि खुद साख्ता दीन असलाफ से मंसूब होकर धीरे धीरे मुकद्दस बन जाता है। चले ये तो शादी की बातें हैं ना, माफ़ कीजिएगा, हमारा तो दीन भी आज बहुत ही ज़्यादा इस किस्म का हो गया कि जो असल दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो तो कहीं पीछे चला गया। अल्लाह के नबी ने मदीना में आकर जब अल्लाह की असल शरीयत को ज़िंदा किया तो उस दौर के यहूद बिगड़ गए। उनको अल्लाह के नबी से यही बैर था कि ये हमारी हर चीज़ पर तनकीद क्यों करते हैं, हम भी तो मजहबी लोग हैं, हमें भी तो ये पता ये है। और आप कह लीजिए कि वो चीज़ जिस पर उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी पारसाई, यानी अपने बड़े रिलीजियस फेमस होने की इमारत खड़ी की हुई थी, वो इनको गिरती हुई दिखी। उनको लगा कि अगर इस शख्स की बात खुल गई तो हमें कौन सुनेगा, हमारी बात कौन सुनेगा। और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के नबी की नेमत से महरूम कर लिया। अगर उस छोटी सी बस्ती के थोड़े से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाते ना, तो आज पूरी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो लिखिए, शहवात पे काबू पाने के लिए नफ्स पे काबू पाना पड़ेगा, और नफ्स के मुकाबले पे आप कहें कि नफ्स पर काबू के मामले में इंसान बड़ा कमज़ोर है, खुलिकल इंसानु दईफा। फिर इसी में अल्लाह ने वरासत के कानून की बात की, तो लिख लीजिए कि वरासत के मामले में कोई नहीं बोल सकता, बहनों को ऐसा नहीं देना, जहेज जो दे दिया था, एक तरफ जुल्म ये किया और दूसरी तरफ दूसरा करें, नहीं नहीं भाइयों को दे दें, ये बांट अल्लाह की तरफ से, इसमें नहीं बोलना। फिर इसमें फेथ इन एक्शन के टॉपिक क्या हैं कि अंबिया और सालेहीन और नेकुकार लोगों का रास्ता इख्तियार करना है, अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रहना है, और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे।